आपका स्वागत है। विशेष रूप से हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का, उन्होंने बड़ी कृपा किया। लगभग 3 साल के बाद आखिर महाराज ने कृपा किया, इसके लिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चाहेंगे कम से कम साल में एक बार ऐसी कृपा करें ताकि हम लोग की भक्ति जो है ठीक ठाक रहे, क्योंकि अगर बड़े लोग का अगर नजर हट जाता है तो फिर बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं। इसीलिए महाराज से प्रार्थना है लेकिन बहुत सारे जा नहीं पाते हैं। तो महाराज जी का 3 बार स्वागत करेंगे हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल, ज्यादा समझने के स्वागत है। कनाडा से हमारे गुरु जी भी आए हुए हैं, श्रीमान अकुरदास गुरु जी। यहाँ पिछली बार 4 दिन का प्रोग्राम करके गए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनका 3 बार बोलना है हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और सुखप्रिय गुरु जी का होशियारपुर से जालंधर से बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे यूथ परिषद विशेष रूप से इनका भी हार्दिक स्वागत है। और सारे भक्तों का दिल्ली से शिमला से बहुत बहुत स्वागत है। शिमला में उन्होंने 50 साल किया है। हरे कृष्ण
inspirada y fue inspirada de ti. Es cuando Dios me regresa aquí. Oh, glorifica tu nombre. Oh, glorifica tu nombre. Oh, glorifica tu nombre. Oh, glorifica tu nombre. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Asa Pastor Gahadik Swagat. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Hare Krishna. कुछ दिन में बहुत शुभ अवसर आने वाला है. क्या है वो? गीता जयंती. कब है गीता जयंती? अभी हरियाणा में सरकार काफी पैसा खर्च ली है, इसलिए सब लोग बड़े धूमधाम से करना. मैंने सोचा कि गीता के विषय में चर्चा की जाए. आज मैं पढ़ रहा था पापा जी का एक पत्र, जिसमें उन्होंने कहा सारे वैदिक शास्त्रों का सार भगवद गीता में है. और अगर आप गीता ध्यान से पढ़ो तो उसका अर्थ है पूरे वैदिक साहित्य को आपने पढ़ लिया. वैदिक साहित्य को पढ़े जाओगे जीवन की समाप्ति पर. गीता में क्या है वैदिक शास्त्रों का? तो अगर हम गीता को पढ़ें, समझें, अपनाएं, जीवन गीता के उपदेश के अनुसार जीवन बिताए तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है. आपको एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, ये पढ़कर सुनाएंगे. ये 18वें अध्याय का ऐसे
मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रयोसि मे. अनुवाद. सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो. इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे. मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो.
अनुवाद दोहराइए.
मेरे पीछे दोहराइए. सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो. इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे. मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो. तात्पर्य. ज्ञान का उह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे. व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं. जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो. मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो. वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे. और भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा. ये गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का परम मित्र है, परम प्रिय मित्र है. जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है. ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं यथा विष्णु नारायण राम वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की ये एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वे कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा हैं।
तुमने ध्यान से सुना कोई और नहीं आ रहा कोई ओम ज्ञान देवेंद्रस्य ज्ञान
हरे
कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे
जैसे मैं कुछ समय पहले कह रहा सभा के शब्दों में पूरे वैदिक सार में कहा प्राप्त होता है भगवद्गीता में। भगवद्गीता विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भगवद्गीता का इतिहास गीता के चौथे अध्याय में प्राप्त होते भगवान ने क्या कहा। मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले कैसे सूर्य के देवता उनका नाम क्या था जैसे ज्ञान मन को पहुंचा आगे मनाया लिखा तो समय के साथ ही ज्ञान हो गया था। मैं फिर से तुम्हें दे रहा हूँ क्यों क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो इसलिए तुम्हें ज्ञान के रहस्य को समझ पाओगे। जैसे प्रभुपाद जी गीता की भूमिका में समझाते हैं कि अगर आप गीता को समझना चाहो तो किसी भक्त द्वारा इस शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जैसे उदाहरण दिए जब से भगवत गीता यंत्र में प्रकाशित हुई है तो आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 90 भाषाओं में आज भगवत गीता यंत्र प्राप्त है और सारे विश्व में लोग गीता पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर समस्या का हल है। हर प्रश्न का उत्तर है। गीता के द्वारा अज्ञानता दूर होती है ज्ञान प्राप्त होता है। दो प्रकार के ज्ञान है समाज में भौतिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान आपको कोने कोने में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है असली आध्यात्मिक ज्ञान। गीता द्वारा ये स्थापित किया गया है परम भगवान कौन है। गीता द्वारा आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपका असली स्वरूप क्या है। अज्ञानता में हम क्या सोचते हैं ये ध्येय हमारा असली स्वरूप है और सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं देह को संतुष्ट करने में। क्या हम देह को संतुष्ट कर सकते हैं इंद्रिय को संतुष्ट कर सकते हैं चाहे कितनी भी सुविधा मिल जाए नहीं कर सकते। तो ये समझना आवश्यक है। जैसे अगर आप लिखना पढ़ना शुरू कर सीखना चाहते हो तो बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हो ABCD है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान का ABCD है गीता का दूसरा अध्याय ध्यान की भगवान कह रहे हैं क्योंकि आत्मा का जन्म धर्म मृत्यु ध्येय ईश्वर है और आत्मा का ध्यान तरह हो रहा है। तो जिस प्रकार हम हमारे राजे वस्त्र को ध्यान कर देव से ग्रहण करते हैं आत्मा एक देह को त्याग कर देह स्वीकार करती है। भगवत अपने तीसरे स्कंद में देवभूति माता ने अपने बेटे कपिला देव से पूछा, बेटे ये बताओ किस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा, ये उत्तर दिया कारण देव नहीं देव हमारे जो अनेक कर्म करते हो इसके अनेक साक्षी हैं। सूर्य के देवता, चंद्रमा के देवता, चंद्रमा तारे, वायु के देवता इत्यादि तो कर्मों के अनुसार। इसलिए आगे तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा आप मुक्त हो सको। गीता का संदेश क्या है, सर्वधर्म परित्यज्य सर्वधर्म को छोड़कर मेरी शरण में हो। इसका ये अर्थ नहीं ईसाई धर्म छोड़ो, इस्लाम छोड़ो, ये छोड़ो और हिंदू बन जाओ। सर्वधर्म पर देते करते हैं सब इच्छाओं को त्याग हो, मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करो किसी हमारे किसी का। तो गीता का निर्णय क्या है कि भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। ये श्रीमद् भगवता का निर्णय, यह गीता का निर्णय। आज श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सदा तो मेरा चिंतन करो। ये कठिन है, आसान है, कठिन है, आसान है। भगवान कह रहे हैं सदा मेरा चिंतन करो। तो आप पूछ सकते हो ये तो बड़ा कठिन है, किस विषय का चिंतन करें, अनेक उपाय है। एक तो जैसे बाबा जी तात्पर्य कह रहे हैं भगवान का रूप, भगवान अपने हमको प्रकट करते हैं आंचल विग्रह के रूप में, जैसे आपके मंदिर में श्री श्री राधा कुंज बिहारी का बहुत ही सुंदर विग्रह है। वृंदावन जाते हो तो कृष्ण बलराम का दर्शन लेते हो, मायापुर जाते थे किसका दर्शन, ये एक उदाहरण। फिर भगवान की लीला है, भगवान की लीलाओं की कुछ कमी है, है? जैसे अभी कार्तिक का महीना समाप्त हुआ है कुछ दिन पहले, और कार्तिक के महीने में हम किस प्रार्थना का उच्चारण रोज करते हो, ये भगवान की बड़ी प्रसिद्ध लीला है धामधर लीला, जिसमें आप पढ़ते हो किस पर ये सदा माता चिंतित रहती थी कि मेरा बेटा पड़ोस के घर में मक्खन क्यों चुराता है, शहर और मक्खन ज्यादा अच्छा। धर्मराज के पास 9 लाख गायें थी जो सजी थी हीरे मोतियों के साथ, और माता ने जब प्रयास किया बेटे को पालने के लिए कि बेटा बड़ा शरारती था, घर में भी मटका छोड़ दिया था, तो मक्खन बांध रहे थे अगर किसको मान बांट रहे थे बंदरों को, कई बार जब माता बेटे को डांटती थी तो बेटा कहता था मैं बंदर हूँ ना, मैं बंदरों के साथ जाके रहूंगा, जाने दो मुझे बंदर। फिर बात कहते माता ने भगवान को मानने का प्रयास किया, पहले एक रस्सी ली, फिर दूसरी तीसरी, अंत में क्या परिणाम था? कितनी उंगलियां छोड़ी? दो उंगलियां छोड़ी। 3 साल का बच्चा भगवान की आयु थी, 3 साल 4 महीने छोटे थे। एक रस्सी से ही पार लेना चाहिए, एक रस्सी काफी थी, पर इतनी रस्सी में जोड़ा जब भी बांध नहीं पाए, ये थी भगवान की शक्ति। तो जब भगवान ने देखा सब हंस रहे हैं, सब सोच रहे हैं सदा माता इतनी निकम ही है, छोटे बेटे को बांध नहीं सकती, फिर भगवान ने बांध दी। तो हमारे आचार्य ने कहा है दो उंगलियां छोटी होने की, छोटी दो उंगलियां कम होने का व्याख्या क्या है? एक उंगली का अर्थ यह है, अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, कोई त्यागना पड़ेगा, तपस्या का पालन करना पड़ेगा, फिर भगवान की कृपा से अपने समझ पाओगे। ये नहीं पर घमंडी भाव है उनके, भगवान का दर्शन कराओ, आई वॉन्ट टू सी गॉड। अक्सर कई बार विचार के दौरान हम भक्तों को मिलते कहते हैं आई वॉन्ट टू सी गॉड, हम प्रभु जी कहते थे कोई समस्या है क्वालिफिकेशन टू सी गॉड, और भगवान को देखने की योग्यता होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए, तो प्राप्त होती है भक्ति के द्वारा। तो भगवान के नहीं खेल है कार्य के वही नाम है। तो कार्तिक के महीने में आप लोगों ने शायद गोवर्धन परिक्रमा भी किया हो, कितने मंदिर ने गोवर्धन परिक्रम किया, भगवान की गोवर्धन लीला, ये कोई छोटी लीला है। इंद्र देवता क्रोधित हो गए थे क्योंकि भगवान ने नंदराज और दूसरे किसानों का इंद्र यज्ञ रुकवा दिया। कई बार देवता घमंडी हो जाते हैं, तो इंद्र ने सोचा एक छोटे लड़के के कहने पर इन्होंने इंद्र यज्ञ नहीं अर्पण किया, इनको मैं सबक दिया। इंद्र ने तेजी के साथ कौन से पालन भेजे? समझ के पालन जो इतनी तेजी से थंडरिंग लाइटनिंग इतनी आवाज आवाज सुनने पर हार्ट अटैक हो जाता, और पानी का हर बूंद खमे लेना भारी था। भगवान ने देखा तो मेरी बात सुने, देखा अब डूबने वाले भगवानों की सुरक्षा की, कैसे गोवर्धन पर्वत उठा, गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया? दो हाथों से, और उन दिनों में जो गोवर्धन पर्वत था आकाश इतना ऊंचा था, वो छोटा हो गया। तो जब आप भगवान के अद्भुत इनाम की चर्चा करते हो के साथ और अनेक रूपों में, भगवान के अनेक लीलाए आप ऐसे कितने भक्तों ने धर्मोत्तम के दस स्थान को पढ़ाया, दस स्थान में भगवान की अनेक अद्भुत लीलाओं के विषय में पढ़ते हो। भगवान ने कहा तुमने मिट्टी खाई है, मिट्टी ने क्या कहा? नहीं, तेरे भाई ने झूठी शिकायत लगाई है, कहते समय हार गए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुख खोलकर दिखा दो। मेरे मुख खोला तो भगवान ने चले क्या देखा, पूरे विश्वास हो भगवान की अनेक अनेक लीलाएं यहाँ कहा जा रहा है। सदा मेरा चिंतन करो। कई बार लोग पूछते हैं चिंतन कैसे करें, एक उनके रूप का, दूसरा है उनकी अनेक लीलाओं का। फिर कई गुरु एक और उदाहरण है उनकी उपदेश का। उनको उपदेश कहाँ प्राप्त होता है, मेरे शासन में खास करके मेरे शासन में भगवान के उपदेश का। अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, जानना चाहते विश्व क्या बीत रहा है, पर गीता विज्ञान संदेश है बहुत कम मान जाते हैं। तो भगवान की गीता के संदेश का तो भगवान की अनेक मिला है। आप भगवता में सुधामा ब्राह्मण की कथा पढ़ते हो, भगवान के मित्र थे जो गरीब है। सुधामा ब्राह्मण ब्राह्मण था, ब्राह्मण जो है हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, ये नहीं दूसरों को दोष देते रहते हैं। तो सुधाम ब्राह्मण से संतुष्ट है, उसकी पत्नी और वो गरीब थे, खाने के लिए भी नहीं थे भोजन आता था। उनकी पत्नी ने कहा तुम्हारा एक धनी मित्र है ना, उसे जाकर मिलो। भगवान मिलने गए, सुधामा ब्राह्मण मिलने गए अपने प्रिय मित्र से, कहा नहीं मिलने। भगवान ने उनके बड़े आदर से स्वागत किया, सारे महल के जो चौकीदार थे उन्होंने देखा कितने स्नेह के साथ कल भगवान ने गरीब ब्राह्मण का स्वागत कर लिया। ब्राह्मण की फटी धोती थी, गंदी धोती, और भगवान के महल में भगवान ने उन्हें गले लगाया, चरण धोए, ये दिखाने के लिए किस प्रकार ब्राह्मण का स्वागत होना चाहिए। उन्होंने अपने बचपन की लीला का स्मरण किया। सुधामा ब्राह्मण कुछ मांगे बिना लौटने की तैयारी की अपने घर। रास्ते में सोच रहे थे, मैं ही दूर से आया था, पति ने प्रेरणा दी थी, मैंने कुछ मांगा ही नहीं। जो घर लौटे क्या देखा उन्होंने, क्या देखा, उनकी कुटिया बन गई है। ये मोदी के साथ सजा हुआ पत्नी सदा बड़ी साड़ी में होती थी, महंगी साड़ी गहनों के साथ सजी हुई, समझ गए ये मेरे मिल सके। हम कहोगे हमें भी सुधामा ब्राह्मण का लाभ प्राप्त हो सकता है, हमें अपने घर लाज लौटेंगे, सो सकेंगे, हमारा घर महल बन गया। अगर हम पवित्र भाव उनके ब्राह्मण का अनुकूल है तो शायद संभव हो सकता है। इस पर भगवान की अनेक लीला है और भगवान के नामों के विषय में भी स्मरण करो। जैसे आप जानते हो इस संसद द्वारा कौन से मंत्र का प्रचार हो रहा है, कौन से मंत्र का, क्यों, क्योंकि ये शासन होते हरे नाम हरे नाम हरे नाम है वो केवल ये शास्त्र में है। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने शुक्रदेव गोस्वामी से पूछा, ये बताइए कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो उत्तर में शुक्रिया का स्वामी था, हरे दशे राजन, हे राजा हरेक में दोष ही दोष है, सच है गलत। हाँ आप लोग बड़े हल्के रूप से जवाब देते हो, सच है या झूठ है। आजकल सबके पास है स्मार्टफोन, कितने भक्त के पास स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन है इनका शुद्ध प्रभु भी कह सकते हो, जो भक्त है अपने स्मार्टफोन पे प्रभु के ग्रंथों को बिठाते हैं, भगवान की तस्वीरों को बिठाते हैं, और जो भक्त है वो स्मार्टफोन बिठा सकते हैं, गंदी चीजें बने। और आजकल आप ट्रेन में जाओ किधर जाओ सब जुड़े हुए हैं उनके स्मार्टफोन के साथ। ट्रेन में कई बार देखता हूँ शुरू से अंदर व्यक्ति यहाँ सिनेमा देख रहा है कोई स्मार्टफोन, सब स्मार्टफोन से टेलीफोन रेवोल्यूशन के कारण कहीं कि तो फैमिली है बिना हो रही है लोगों का इतना आकर्षण है स्मार्टफोन के प्रति। तो कलयुग में दोष ही दोष है, एक गुण है इस कलयुग में, क्या है कृष्ण कृष्ण। तो कई बार पूछते हैं लोग अगर आप हरे कृष्ण मंत्र लेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, कौन जाएगा चेत दर्पण मार्जन। एक लाभ यह है कि हृदय में जो बैल है काम को लोभ मोह मत्सर के रूप में आगे चेतन मामलों को कहते हैं अनंत बोधि वर्धन, नाम लेने से आनंद सुख शांति। आज समाज में सुख है शांति है उसके बदले क्या है, चिंता निराशा तनाव बेचैनी सच। तो इस कलयुग में ये हरिनाम एक उपाय है, तो ये स्मरण करो हरिनाम की महिमा, हरिनाम के द्वारा वो क्या कह रहे हैं मेरा चिंतन करो। भगवान को चिंतन करने का अनेक साधन है, भगवत गीता में शास्त्र में कहा गया है जहां आपका मन होगा मृत्यु के समय वो इस प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा, अंते नारायण स्मृति। शास्त्र में निर्णय यह है इस प्रकार की योजना करो मृत्यु के समय आपका मन का हो भगवान के चरण कमलों में। मान लो आप मृत्यु के समय आप सोच रहे हो अरे इतनी बड़ी कोठी बनाई मैंने यहाँ नगर में केवल 20 साल ही रहे और समय में रहते हैं प्रकृति के नियम इतने अच्छे उसी मकान में आपको जन्म भी मिल जाएगा। मानसी के रूप में नहीं पढ़ते हो महाराज भारत की कथा, महाराज भारत पृथ्वी पर शासन पृथ्वी में इतना सुख था कि पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष शासन करने के बाद हजारों सालों का उन्होंने त्याग और जंगल में गए भगवान का चिंतन करने के। उन्होंने देखा एक दिन एक हिरणी का पीछा एक शेर कर रहा था, हिरणी के पेट में बचा था, हिरणी ने छलांग लगाई मन को सदा ठीक स्थान में रखा, और अगर मन भटकता है तो उसे क्या करो भटकते मन को क्या किया जाए, जहां भटकता है वापस ले आओ। आगे भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त बनो। भगवान ये नहीं कहते किसी देवता देवी का भक्त बनो, भगवान स्पष्ट किया कि कह रहे मेरा मन बनो, मेरा चिंतन करो, मेरी शरण में हो। ये गीता का उपदेश कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं भगवद गीता का उपदेश? परम भगवान, परम भगवान। भगवान ने गीता में स्थापित किया है कि जो वर आपको देवता द्वारा प्राप्त होता है असमें वो वर उनके द्वारा उनके कारण प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं तेरी शरण में हो, देवताओं की शरण में हो। ज्ञान दे देव और प्राधा देव करो, जो देवता की उपासना करेगा तो देवताओं के पास जाएगा, तो जो मेरी उपासना करेगा वो ही मेरे पास आता है। भक्त बनो तो कृष्ण भगवान के भक्त बनो, राम भगवान के। फिर भगवत ने उदाहरण उदाहरण किया जाता है, पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पूरे वृक्ष में सबको भाव आ जाएगा। कृष्ण भक्ति द्वारा एक देवता देवी सबको हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी उपासना करो और मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना करो। तो भगवान की उपासना करते हैं मुझे आचर विग्रह के रूप में। इस आचर विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं, इस प्रकार भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं। आचर विग्रह की उपासना शासन शिक्षा के आधार पर की जाती है। मुझे नमस्कार करो, दूसरे शब्द में मेरे शरणागत हो जाओ। जैसे भगवान गीता में कहते हैं यद करोषि यद दर्शनार्थि यद करोषि ददासि यद यद सर्वसति कौन्तेया तत् पुरुषो मन। जो भी तुम करो दान दो तपस्या करो इससे मेरी खुशी। तो गीता का निर्णय क्या है? कृष्ण भगवान परम भगवान है और ये निर्णय अर्जुन ने भी स्वीकार किया। अर्जुन ने यह भी कहा असीधा देव व्यास सबका ये निर्णय है कृष्ण तीन भगवान परम। गीता के हर श्लोक के द्वारा पढ़ते हो श्री भगवान वचन, श्री भगवान वचन का क्या अर्थ है? परम भगवान बोल रहे हैं। जब आप गीता पढ़ते हो तो आपको ये सोचना चाहिए भगवान आपसे चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे वो वही प्रश्न है तो आप पर हम पूछते हैं। अर्जुन तो भगवान के सनातन साथी है तो वो अज्ञानता में कैसे आ गए? भगवान ने वैसी स्थिति बनाई गीता का उपदेश हम सबके सुधार के लिए। तो गीता का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। संक्षेप में गीता का संदेश है जिसका भाव से हमें कार्य करना है, जिसका भाव से करोगे तो मन शांत रहेगा। चैतन्य चैतन्य तो एक श्लोक है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत मुक्ति मुक्ति से निकाल भी सका शांत। निष्काम भाव से कार्य करोगे दोषों से बचते हुए शांत होगी। ये गीता में बड़ा सुंदर उदाहरण है कमल का फूल जल में है तो जल को छूता नहीं, किसी प्रकार पौधे धर्म बनाओ दोषों से बचो। तो गीता जयंती के उपलक्ष हमें क्या करना चाहिए? ये निर्णय करना चाहिए एकदम गीता को ध्यान से पढ़ना। आप जब ज्ञान की तैयारी करते हो ध्यान से पढ़ते हो ना, खास करके अगर आप आईआईटी में जाने की उम्मीद रखते हो तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। गीता को भी पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए, यानी रात के 10 बजे पढ़ना शुरू करें और समाधान भी छोड़ने का समय है। मैं ध्यान से अर्जुन भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने ये संदेश ध्यान से सुना है? क्या तुम्हारी ज्ञान दे अब दूर हो गई है? अर्जुन ने कहा, हाँ मैंने ध्यान से सुना है। तो गीता का संदेश जितने ध्यान से पढ़ोगे सुनोगे उतनी जल्दी उसे समझ पाओगे। तो गीता का संदेश क्या है कि हमें हर कार्य करना चाहिए भगवान की खुशी। भगवान कहते हैं, ये किए दाना तपस्या तीन चीजों को मत त्यागो। ये क्या कार्य है हमें प्राप्ति का साधन, इसको नहीं हमें हमें प्राप्ति का साधन है भगवान के नाम दाना। सबसे ऊंचा दान क्या है? ज्ञान का दान। हम बहुत एक समाज में सोचते हैं, हाँ हॉस्पिटल में दान दे दिया, पीड़ों की शादी करा दी, नहीं असली दान है वो ज्ञान जिसके उपयोग से मृत्यु के बंधन से काम प्राप्त हो सके। और तपस्या संक्षेप में तपस्या का अर्थ है उन कार्य में त्यागना। तो आप सबसे ये विनती है कि आप गीता को पढ़िए। आप में से कितने भक्त हो इस सभा में रोज गीता को पढ़ते हो? और आप में से कितने भक्त हो जिनके घर में भगवद गीता यह रूप है? गीता है सबके पास तो पढ़ते हैं छोटे तो सब जिनकी बात गीता में क्या करते हैं और भगवान गीता के 18वें अध्याय में ये भी कहते हैं, सूचना देते हैं कि सबसे प्रिय भक्त कौन है। भगवान क्या कहते हैं इस विषय में कौन बताएगा?
जो मेरा प्रचार करता
है। हाँ, जो मेरा प्रचार करता है उसे ज्यादा प्रिय हुआ है। कई बार लोग पूछते मत पूछते, वहां कोई शॉर्टकट नहीं है भगवान की कृपा प्राप्त करने एक शॉर्टकट है प्रचार करो। तो गीता जन्म के उपलक्ष्य हमारे भक्त प्रयास करते हैं गीता पाठने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान का उपदेश है, भगवान का ज्ञान है। तो गीता पढ़ेंगे तो अपने जीवन को सुधारेंगे, गीता पढ़ेंगे तो असली ज्ञान की प्राप्ति होगी, गीता पढ़ेंगे तो निराश बचने से बच पाएंगे। गीता है असली ज्ञान जिसके जिसके उपयोग से हम निराशा से बच सकते हैं। तो भगवान कहते हैं सब भक्त हमें सबसे प्रिय है जो प्रचार करता है। तो हमारे इस्कॉन के भक्त सारे विश्व में खास के भारत में गीता जयंती उपलब्ध का प्रयास करते हैं गीता बांटने के लिए। गीता बांटने के लिए वो घर घर जाते हैं, दसों में जाते हैं, आप अभी गीता बांटते हो आप में से कितने भक्त हैं सभा में तो हर साल या पिछले साल जिन्होंने सहयोग दिया था ग्रंथ निर्मिशन की सेवा में ब्रिटिश विजन में मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। एक विधि ये है कि गीता जयंती के उपलक्ष अभी निर्णय करो कि कल से आपने कम से कम एक श्लोक तात्पर्य के साथ रोज पढ़ना है। तैयार हो इसके लिए? कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी कुछ भी मांगो और पैसा नहीं मांगना, पैसे नहीं मांगने आ रहे। गीता रोज पढ़िए तो कितने भक्त यार गीता को रोज पढ़ोगे सब सब देखिए हाथ उठाया था गार गीता है और अगर आप गीता पाठ की सेवा करोगे आपको भगवान की कृपा भी मिलेगी अगर आपको लगता है आपके इस शहर का नाम ये अपना नगर आपको कृपा की जरूरत नहीं आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें तो भगवान की कृपा चाहिए इतना प्रयास है गीता पाठ किए जैसे दिल्ली जैसे शहर में दो मंदिर मिलकर 8 लाख गीता पाठ किए पंजाबी बार दो मंदिर 3 लाख और 5 लाख तो और ये गीता 80% प्रतिशत आप जैसे गृहस्थ भक्त बांट रहे
हैं
तो चंडीगढ़ में भी और सारे विश्व में आपको पता है आपके देश में कितने लाखों ईसाई प्रतिनिधि घर घर जाकर बाइबल को बांट रहे हैं आपको कुछ जानना आ जाती है कितने प्रतिनिधि इस्लाम का प्रसार करे इसका के अलावा कौन कर रहा है कृष्ण प्रतिनिधि प्रचार पिछले हफ्ते दिल्ली के बड़े ऑडिटोरियम में इस्कॉन का बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि के रूप में आए थे तो वाइस प्रेसिडेंट जी ने अपने भाषण में कहा कि जो काम इस्कॉन संस्था ने किया है शुरू में कोई किसी ने नहीं किया विश्व के कोने कोने में गीता का अध्ययन हो रहा है विश्व के कोने कोने में कई नाम दोस्तों 600 से ज्यादा केंद्र है और इतने महाप्रभु जी की क्या थी महाप्रभु की भविष्यवाणी
पृथ्वी
के हर कोने में प्रभुपाद प्रयास करके 70 साल की आयु में भारत से निकले थे के साथ उनके मन में एक ही भाव था समाज का उद्धार और उन्होंने प्रयास किया विश्व का भ्रमण किया 14 दफा कृष्ण भक्ति की स्थापना की अनेक देशों में आज 600 से अधिक केंद्र है विश्व के कोने में तो आपके यमुनानगर में भी योजना है सुंदर मंदिर बनाने की आपको पता है इसके विषय में बाकी लगाइए प्रभु के सहयोग से योजना बन रही है ज्यादा कुछ बिगाड़ने के लिए सुंदर मंदिर बनाने के लिए बनाना चाहिए या नहीं फिर सब मेहनत करोगे बनाने में कि नहीं मेहनत करना पड़ेगा कई वालों के लिए हाँ जब मंदिर बन जाएगा हम दर्शन के आ जाएंगे तो उसे बनाना पड़ेगा आप सब जुड़ी है सेवा के साथ हमारा सौभाग्य है कि भगवान हमें सेवा में जोड़ते हैं सेवा में नहीं जोड़ेंगे तो काम आप फंसोगे किसके प्रभाव में माया से बचना है हरि का नाम लो साधु संगत में रहो गीता भगवान का अध्ययन करो भगवान के आचरण की उपासना करो हमें भूलना नहीं चाहिए मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और अगर आप इसका सदुपयोग करना चाहते हो ये जो संदिग्ध श्लोक वो पढ़ रहा सुना है इसका उपयोग करो तो भगवान क्या कह रहे हैं आज के श्लोक में कौन बताएगा क्या करे तो मेरे धाम आओगे। भगवान कहते हैं बिना शंखा के तो मेरे धाम में आओगे। आजकल सारी दुनिया में अमेज़न का व्यापार चलते जा रहा है। आपने सुना है अमेज़न? लोग अमेज़न से क्यों खरीदने जा रहा है? क्योंकि वो कहते हैं वहां माल खरीदो अच्छा नहीं लगे तो वापस कर देना। इंडिया में कई लोग कपड़ों को दो हफ्ते पहन के भी वापस कर देते। तो जब अमेज़न कंपनी कहती है वहां माल खरीदा नहीं चाहिए तो पैसा वापस कर देंगे, हम विश्वास करते हैं। जब भगवान कहते हैं मन मन बाबा मन बगल मान लेना मुस्कुरा और भेज सकते हैं। हाँ सच हो सकता है नहीं हो सकता किसने देखा है? हमें गीता के संदेश में पूरा विश्वास रखना चाहिए। तो पढ़ोगे तो विश्वास बढ़ेगा। यहाँ गीता ले रही हो घर में से जा रहे हो ठीक है अच्छा है, अगर पढ़ोगे और बेहतर है। गीता को पढ़ो दूसरों को पढ़ाओ इस प्रकार और दूसरों को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण
हरे
कृष्ण कृष्ण कोई प्रश्न है गीता?
कोई क्वेश्चन?
आप में से कितने भक्त जो सोलह माला को जाप करते हो, कितने भक्त जो कि अनिवार्य को राधा कृष्ण बिहारी के मंदिर आते हो? कितने भक्त जो कि भगवान के धाम लौटना चाहते हो? भक्त जो यमुनानगर में हर जन्म लेना चाहते हैं दो यमुनानगर पे भी तो अगर भगवान के धाम लौटना है तो इस श्लोक का पालन करो। मन बना वो मन बना मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी प्रार्थना करो, बस अपना धन रखो तो भगवान का चिंतन करो तो भगवान के धन करो। ओके हरे कृष्ण भक्त मंदिर आ गया
बहुत अच्छा
बहुत अच्छा सब खुश हो गए। साफ सफाई हर इतवार को अपने मित्रों को मिलाओ रिश्तेदारों को मिलाओ सबको सुखी बनाने का प्रयास करो ये होना चाहिए भक्त का भाव।